పంచాకల్పతిర్భాషం పతితాం పావన వైష్ణవేభ్యో నమో మహాభద్రాయ కృష్ణ ప్రేమ కృష్ణాయ కృష్ణ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాంత రాధాకాంత నమస్తే తప్తకంచన గౌరాంగీరా దేవి నామేశ్వరి విషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హా దేవి కాకు భరద భగదయాత్రి జాచి నిపత్త భూవి దండవత ఉద్భటారతి ఆస్య ప్రసాదమబుదస్య జనస్య తీర్థ గంధర్వికే తవ గణీ అంగశ్యామలిం ఛటాభిరమితో మందే కృతేంది జడ్డంజాగుడరోచ సంవిదధతమ పట్టంబరస్య వృందారణ్య నివాసినం హృదిల సద్దామాభిరామో వేషితో జలభు ధ్యాయం తవైవాస్మి తవైవాస్మి నజీవామి త్వయా వినా ఇతి దేవ్యాయ రాధే తన్నయ మామచరణ భక్త్యా విహీనాపరాధలక్ష్య సేవ్వాశ్చ కామాదితరంగమధ్యై కృపామయీ త్వాం శరణం ప్రపన్నమస్తే రాధికాయై తదాలయే కృష్ణాయ కృష్ణభక్తాయ తద్భక్తాయ వైరాగ్యజుగభక్తిరసం ప్రయత్నైపాయన్మాను కృపాంబుధిర్యా పరదుఃఖదుఃఖీ సనాతనస్తం ప్రభుమాశ్రయ శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం आज हम लोग बृहद भगवत अमृत आरंभ करेंगे। चतुर्मास व्रत के प्रारंभ से हम लोग इसको आरंभ किया था, बहुत दिन हो गए। बीच बीच में किन्हीं कारणों से कुछ दूसरा प्रसंग आ गया, रथ यात्रा के समय में रथ यात्रा का प्रसंग आ गया और भी कितने प्रसंग आए, इसलिए इसको बीच बीच में बंद करना पड़ा। किसी साधक के लिए, रागानुगा भक्ति के लिए जिसकी इच्छा है, उसके लिए ग्रंथ बड़ी उपयोगी है। कैसे भगवत भक्ति में हम प्रवेश कर सकते हैं और भगवत भक्ति क्या चीज है, इस ग्रंथ में सांगो पांग रूप में वर्णन किया गया है। पहले खंड में हम लोगों ने वर्णन किया नारद जी का चरित्र लेकर। ये आरंभ हुई पुस्तक श्रीमद्भागवत जब समाप्त हो गई 7 दिनों में, तो परीक्षित महाराज जी को उनकी मैया ने प्रश्न किया, बेटा मैं तो स्त्री जाति होने के कारण सुखदेव गोस्वामी के इतने बड़े सिद्धांतपूर्ण दार्शनिक तत्वों को मैं अनुधावन नहीं कर सकी, हृदयंगम नहीं कर सकी, इसलिए तुम थोड़े ही शब्दों में सरल सहज रूप में एक स्त्री जिसको समझ सके अच्छी तरह से, इस रूप में उसका सार हमको बतला दो। तो परीक्षित महाराज जी ने बतलाया। एक नारद जी अपने स्वयं आचरण करने के बहाने उन्होंने भगवान की महिमा से भक्तों की महिमा और उस धाम की महिमा दोनों चीज बतलाए। भगवान की महिमा किसे होती है? परिकरों से और उस धाम से। नारायण लोक में राष्ट्र नहीं हो सकता है, नारायण लोक में गोपियां नहीं जा सकती, गोप नहीं जा सकते, राम भी नहीं जाएंगे, हनुमान भी नहीं जाएंगे। इस तरह से भगवान की महिमा उनके परिकरों से और धाम से वो होता है। नारद जी ने प्रत्येक धाम में, प्रत्येक क्षेत्रों में जाकर स्वयं उपलब्धि की भगवत तत्व दी। भगवान एक होने पर भी उनके विविध प्रकाश, धाम एक होने पर भी मूलतः वृंदावन ही धाम धाम है, उसके भी प्रकाश हैं। और मूलतः कृष्ण के परिकर ब्रज में जो है वही मूल परिकर हैं, किंतु उन परिकरों के भी प्रकाश हैं। एक होने पर भी, सिद्धांततः एक होने पर भी, किंतु उसमें प्रकाश है। भगवान दो नहीं है, तीन, दस, बीस नहीं है। इसलिए नारद जी इस तत्व को, वो रसिक हैं, रसिक शिरोमणि और सिद्धांतों के जानने में सर्वाग्रणी हैं, तो भी एकदम अज्ञानी बनकर प्रारंभ से वो चले हैं नारद जी। और एक विष्णु शालग्राम पूजक से आरंभ करते हुए आप ही धन्य हैं जगत में प्रारंभ करके गोलोक तक पहुंचे हैं। द्वारका में पहुंचकर गोपियों का महिमा सबसे श्रेष्ठ है इसको समझाया। वात्सल्य रस से द्वारका की महिषियों की अपेक्षा भी वृंदावन की गोपियों की महिमा सर्वाधिक है, और उनमें भी सबसे अधिक राधा जी की महिमा है ये भी। और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, आराधकों में सबसे गोपियां ही सबसे श्रेष्ठ। आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी
तदीयानां समर्चनम।
तो तदीया में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? राधिका जी। यहाँ पर जितने भी तदीय हैं उन सब में ये श्रेष्ठ हैं। नारद जी जब सुना सब अब प्रेम में विवल हो गए। विशेष करके उनको द्वारका के नौ वृंदावन में गोपियों की महिमा दिखलाई और उसे सत्यभामा, रुक्मिणी, पद्मा इत्यादि सभी उसके उत्कर्ष को देख करके चमत्कृत हो गई। तब नारद जी भी बड़े आनंदित हुए, सकुच गए, सकुचा गए, लज्जित हुए। आज प्रभु को बड़ा कष्ट में लिया, उनको मूर्छित कर दिया। कृष्ण कहते हैं तू वर मांगो। वर मांगू? मैंने तो बड़ा भारी अपराध आपके चरणों में किया है कि आपको मूर्छित कर दिया, इतना तंग किया। तुम यदि ऐसा नहीं करता तो ब्रज की महिमा, हमारे परिकरों की महिमा का प्रकाश नहीं होता। इसलिए तुम वर देने योग्य हो, तुम कहो क्या लोगे। तो उन्होंने यही वर मांगा। प्रभु आपकी वृंदावन की जो लीलाओं का स्मरण करे, गोपियों के साथ में आपकी जो लीलाएं हैं, और वो लीलाएं जहां जहां हुई हैं वहां पर कोई जाकर के माथा टेके, वहां की धूली स्पर्श करे, और इन लीलाओं का कोई कीर्तन करे, तो प्रभु कृपा करके आप गोपी प्रेम उन्हें दे दें। तो कृष्ण ने कहा जय ओम अस्मि, ऐसे तो एक बार माने। और कृष्ण, और आपका यह जो रूप सुभद्रा, बलदेव और कृष्ण का जो प्रेम में पिघल गया, यह जगत में प्रकाशित और इसकी महिमा प्रचारित। अजय एवं वही कृष्ण बलदेव और सुभद्रा जी यहाँ पर
जगन्नाथ।
और जो कोई ब्रज में जो कृष्ण की लीला स्थलियाँ हैं, विशेष करके जो नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, जावट, तेर कदम्ब, उद्धव क्यारी, ये जहाँ पर बंसीवर विशेष करके गोवर्धन के ऊपर प्यारियां और राधा कुंड इत्यादि में जो जाकर वहाँ पर प्रीति से होकर के और वहाँ पर प्रणाम करे, उनकी कृपा भिक्षा मांगे, तो वो दुर्लभ प्रेम ब्रह्मा और नारद इत्यादि के लिए सुलभ हो सकता है। सहज रूप ये सहज बनता है। अब वैष्णव के तारतम्य से, परिकरों के तारतम्य से भगवान की तारतम्यता, पहले ऊपर से ले आए थे, अब फिर ये नीचे से चला। जैसे जैसे उनके भक्त होंगे, जैसे जैसे उनका लोक होगा, भगवान की लीला भी और भगवान उतने रसमय होते जाएंगे। वही एक ही कृष्ण सनत सनंदन सनत कुमार के यहाँ ब्रह्म, हनुमान के यहाँ रामचंद्र प्रभु और विश्वक्सेन इत्यादि के यहाँ नारायण, सत्यभामा रुक्मिणी के यहाँ द्वारकाधीश और उद्धव के यहाँ वैसे, और गोपियों के यहाँ सखाओं के यहाँ सखा, वात्सल्य वालों के यहाँ पुत्र और गोपियों के यहाँ प्रियतम होकर के एक ही कृष्ण। कैसे हम उस चीज को पा सकते हैं, इसको भगवान की कृपा या भक्तों की कृपा से ऐसा समझा जाना जा सकता है, बिना उनकी कृपा का ऐसा नहीं। इसको परीक्षित महाराज जी ने अपनी मैया को गोप कुमार के उपाख्यान से खूब सरल सहज रूप में बतला, कैसे उस प्रेम को हम लाभ कर सकते हैं। यदि किसी को लोभ हो गया तो लोभ होने से भी यदि श्रवण कथा इत्यादि न हो और चाहे जी अपने आप में कर लूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। बिना गुरु सेवा वैष्णव की सेवा के ये चीज कभी भी, लाख जन्म में हजार शास्त्र अध्ययन करें, हजार वेदों का अध्ययन करें, उसी तरह से नहीं, साधन करने से नहीं। बतलाया गया है कि श्रुति और स्मृति नारद पंचायत इत्यादि की बधियों का उल्लंघन करके एकांतिक भक्ति के द्वारा भी उत्पात ही लाभ होगा। इसलिए उसकी नीतियों के अनुसार में चलना पड़ेगा, उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं उसको तुमसे। वो क्या है रेगुलेशन? दीक्षा ग्रहण करना और गुरु का विसंभ रूप से सेवन और उनसे शिक्षा, और अपने ही पंडित बन गए ना, बस गोल्ला हो जाए। इसलिए गुरु वैष्णव की सेवा पहले, उद्दंडता ये सब दूर करके, अपना अपनापन खूब ऊंचाई दूर कर, नम्र बन करके, तृणात सुमेचे न करोर जो जितना ही इस चीज को मान करके चलेगा, भक्ति उसके हृदय में अपने आप वैष्णव की कृपा से और भगवान की कृपा से आएगी। भगवान की कृपा से भक्तों की कृपा महत्वशाली है। भक्तों की कृपा भी दो प्रकार की होती है, कैसे? एक कृपा होती है उत्तम श्रेणी के भक्त लोग हैं, वो लोग नहीं कृपा करेंगे। अरे ये देखिए, जैसे भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो भक्ति होती है, तो भगवान किसी पर कृपा करें तो वो तो ठीक है, किंतु कृपा क्यों करेंगे? क्योंकि उनमें कृपा करने की शक्ति है ना? किंतु सब पर कृपा क्यों नहीं करते जो किसी किसी पर करते हैं? ये जगत में बहुत से लोग हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, तो उस पर भगवान की कृपा नहीं। बिरले लोगों पर भगवान की कृपा, ये क्यों? तब तक फिर वो समदर्शी नहीं है, यदि वो किसी पर कृपा करते हैं नहीं कृपा करते हैं तो उन पर ये दोष आता है, वैषम्य दोष। यदि कहो जो भक्तों की कृपा से होती है तो भक्तों पर भी यही दोष लगेगा, उसको अधिक प्यार करते हैं, उसको कम करते हैं, उसको अधिक शिक्षा देते हैं, उसको नहीं देते हैं, उसको कम देते हैं, उसको कुछ बाहरी बातें बतलाते हैं और उसको अंतर की बातें बतलाते हैं, ये क्यों क्यों? तो उस पर भी दोष आता है। किंतु वैष्णव तीन प्रकार के हैं, कौन कौन है?
उत्तम,
मध्यम और
कनिष्ठ।
उत्तम भगवान जैसा ही होता है, उसमें भगवान के करीब करीब सब गुण, लोगों का कष्ट फष्ट वो नहीं जानते, वो आत्माराम आप्त काम होते हैं, उनको कोई कोई सामने आ गया तो हो गया, नहीं तो वृक्ष की भांति सब समय अपने आराध्य का चिंतन करते हैं, उनको दया फया ऐसी नहीं, सामने कोई मर्जी भी जाए तो उनको कोई, वो देखते हैं कि शरीर तो छूटता है, उनको तो आत्मज्ञान होता है। और कनिष्ठ अधिकारी को कोई तत्व का ज्ञान होता नहीं, इसलिए वो कृपा कर नहीं सकता। मध्यम में चार लक्षण है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा जा करो समझ लो, ईश्वर तद्धनेशु बालशेषु दुशस्तुषु प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा जा करो समझ, भगवान के प्रति प्रेम और भक्तों के प्रति तीन प्रकार का भाव, मैत्री सेवायुक्त मैत्री, मैत्री युक्त मैत्री और कृपारूपी कृपा युक्त
मैत्री।
उत्तम भक्तों के प्रति उसकी मैत्री होगी कैसी?
सेवा
भाव में। बराबर वालों के प्रति मैत्री मैत्री, और जो कनिष्ठ है उन पर कृपा युक्त मैत्री होगा किंतु कृपा युक्त। और जो बहिर्मुख होंगे एकदम उनकी उपेक्षा। 42 लोग जो होंगे, 42 मैंने अज्ञानी है किंतु श्रद्धा है, सरल सीधा है, उस पर कृपा करके साधारण लोग उन पर कृपा। तो ये चार वैषम्य मध्यम अधिकारी में ही केवल देखे जाते, उत्तम अधिकारी में ये वैषम्य नहीं है, सबके प्रति वो एक भाव रखते, वो नहीं जानते हैं कि ये बद्ध जीव है, ये मुक्त, सभी को मुक्त ही जीव देखते हैं उत्तम भक्त, इसलिए उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है। इसलिए वैषम्य युक्त जो कर्तव्य है ये मध्यम भक्तों का है, इसलिए ये कृपा कौन करेंगे, किसकी कृपा से ये होगा भक्ति? मध्यम वैषम्य की। किंतु मध्यम सब नहीं, मध्यम में जो उत्तम है वो लोग कृपा। अब वो धीरे धीरे उत्तम अधिकार में प्रवेश करने जा रहे हैं, अभी उत्तम भी नहीं हुए हैं, अभी जा रहे हैं, और मध्यम की सीमा भी अब पार कर चुकने लायक हो गए हैं। ऐसे वैष्णवों में बड़ी दया होती है, वो कृपा करके अपने हृदय का जो कुछ है सब भंडार दे देना चाहते हैं, कृपा कर। ऐसे भक्त यदि कृपा करते हैं तो इसमें वैषम्य दोष नहीं हुआ, क्योंकि उनका लक्षण ही यही है भागवत के अनुसार। तो ऐसे वैष्णव लोग यदि मिल जाएं तो उनको प्राण से दे करके भी उनकी सेवा करें। निंदा दुशुन हृदय मिप्सति
संगलब्ध,
ऐसे वैष्णवों का संग यदि मिल जाए ना तो सिर देने की भी जरूरत होती है। यदि कपटता किया तो पूरे चालाक चतुर होते हैं, कृष्ण के सिखाए होते हैं, वो वंचना कैसे करना है वो पूरी तरह से जानते हैं, इसलिए उनके आगे चलाकी टलाकी ये सब कुछ भी नहीं चल सकता। और उसके अनुसार में वो दंड देंगे या कृपा करेंगे, क्योंकि ये वैषम्य उनके अंदर में है ना, उपेक्षा भी कर देंगे क्योंकि उपेक्षा उनके प्रति है, चलाकी अधिक चतुराई करेंगे हम तो उपेक्षा है। और यदि सीधा साधा रह करके सेवा करते हुए चलेंगे और उसी की आकांक्षा अनन्य रूप में रहेगी तो ये
भक्त के बाद दो प्रकार के होते।
हाँ, वही बतलाने जा रहा था, मुझे याद नहीं आ रही, अभी उसको देखा था, दो प्रकार। हाँ, एक होती है क्या क्या बतला हाँ वही था मैंने आश्चर्य वर्डिंग था मैंने आश्चर्य भाव का आश्चर्य और तो भगवान की कृपा जाने दो तो वो जो रागानुग भक्त होंगे उनमें पूर्व जन्म का संस्कार होना चाहिए
प्राक्तन संस्कार
हाँ प्राक्तन और आधुनिक ये दो कृपा उनकी है ना याद है प्राक्तन और आधुनिक दो प्रकार की उनकी कृपा है वैष्णव की प्राक्तन माने क्या पूर्व पूर्व जन्मों में कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से कुछ लोग हुआ उनको ऐसा ही रसिक तत्वज्ञ और कृपामय वैष्णव की कृपा प्राप्त हुई हो दीक्षा इत्यादि ले चुका हो और भजन में भी कुछ दूर तक अग्रसर हो गया किंतु बहुत कुछ अभी बाकी है तो वो प्राक्तन संस्कार कहलाता है उनकी कृपा और वो प्राक्तन संस्कार होने के बाद में अब ये जो जन्म लिया है इसमें जरूरी नहीं है ये गुरुकरण करना ही होगा ले लिया ठीक है नहीं तो कोई जरूरी नहीं है हरिदास ठाकुर राय रामानंद स्वरूप दामोदर और जितने महाप्रभु के परिकर हैं उन्हीं के लिए नो दीक्षा नो पुनश्चर्य उन लोगों के लिए जिसके प्राक्तन संस्कार गुरुकरण और बहुत ऊंचे तक चले गए हैं भाव को पाने के लिए अब योग्य हो गए हैं ऐसे लोगों के लिए इस जन्म वर्तमान जन्म में दीक्षा इत्यादि की जरूरत नहीं थी फिर भी लेते हैं लोगों की शिक्षा के लिए उपदेश देने के लिए ना किंतु उनको वास्तविक में जरूरत नहीं होता जैसे भरत महाराज पहले जन्म में हो सकता है कि उनके गुरु किंतु दूसरे और तीसरे जन्म में उनका कोई गुरु नहीं हुआ और जाति स्मर होने के नाते भाव उनको अब अनायास ही प्राप्त हो गया और इसके बाद अपने पिताजी की भी नहीं सुनी किसी की भी नहीं सुनी तो ये प्राप्तन पूर्व जन्म का किया हुआ जो संस्कार है वो रहेगा तो सहज रूप में उसको गुरु भी लाभ हो जाएंगे सत्संग भी प्राप्त हो जाएगा और भावना बहुत जल्दी से एक थोड़ा सा सूत्र कहते हैं वो सब कुछ समझ जाएगा इसीलिए कुछ लोग उसको समझते हैं जल्दी से और कुछ लोग समझ नहीं पाते जिसका प्राप्तन संस्कार नहीं है केवल आधुनिक ही संस्कार है वो भी दो प्रकार का है दो प्रकार कैसे जिन्होंने गुरु कर लिया इसके बाद में लोभ उत्पत्ति हुई भक्ति की इच्छा हुई और जिनको पूर्व जन्म का संस्कार होने से पहले ही से कुछ रुचि है वो जान बूझ करके रसिक वैष्णव और ऐसे उत्तम मध्यम भागवत का वो कृपा लेगा उससे दीक्षा लेगा रसिक वैष्णव से जान बूझ करके जो उससे उन्नत हो और बहुत जल्दी वो रैपिड प्रोग्रेस से आगे बढ़ जाएगा जिसको प्राप्तम संस्कार नहीं है केवल इसी जन्म में किसी कहीं सुन करके भगवान की कथाओं को दशम स्कंद का चरित्र गोपी गीत और सब सुन करके या सिर्फ किसी वैष्णव के संग से उसके हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ लोभ उत्पन्न होने के बाद में जो गुरु करेगा कैसा गुरु करेगा यदि पहले गुरु हो गया है तो विचार करने की जरूरत नहीं यदि वो ठीक भक्तिमान नहीं है तो उसको छोड़ करके दूसरा परमार्थी गुरु करना पड़ेगा और नहीं तो गुरु ठीक हैं उनका सिद्धांत और विचार ठीक है किंतु अप्रकट हो गए हैं तो वो क्या करेगा शिक्षा गुरु अथवा दुखी कृष्णदास की भांति श्यामानंद प्रभु की भांति जैसे जीव गोस्वामी के पास आकर के उन्होंने सब सीखा उनके कृपा आदेश से वैसे किंतु रसिक वैष्णवों का लोभ युक्त वैष्णवों का मध्यम अधिकारी का समय जरूर करना पड़ेगा नहीं तो चाहे वो गुरु हो चाहे शिक्षा जरूर उनका समय करना पड़ेगा वो कृपा करेंगे इस तरह से वैष्णवों की कृपा भक्तों की कृपा ये दो प्रकार की है दूसरे में थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले वाले में टाइम कम लगेगा इन सब चीजों को बृहद भगवतामृत में गोप कुमार जी ने अपने जीवन चरित्र से एक ब्राह्मण कुमार को इन्होंने ये सब बतलाया है। हम लोगों ने इसको आरंभ किया था और कुछ दूर तक हम लोग चले गए। कोई एक ब्राह्मण था गोवर्धन वासी, वो चला गया कहाँ? कामरूप माने बांग्लादेश के अंतर्गत
आसाम,
बंगला में आसाम में खजाना रुपया पैसा, जैसे गुजरात में आजकल लोग जाते हैं पंडित कथावाचक घूमने घामने के लिए, वैसे बंगाल और आसाम में लोग जाया करते। सोचा जो वहाँ पर धन अधिक है, यहाँ पर गरीब हम हैं, वहाँ से कुछ धन किसी प्रकार से लाए, तो वहाँ चला गया। तो उसको धन नहीं मिला तो कामाख्या देवी की उपासना की, तो कामाख्या देवी उस पर बड़ी प्रसन्न हो गई। और कुछ कामाख्या देवी मैंने पार्वती देवी, और वो उसके अंतर के भाव को समझकर ये इसके ऊपर में कुछ पूर्व जन्म का संस्कार है, ऐसे नहीं है जो बतलाया, और इसको थोड़ी सी सहायता देने में भी ये बहुत ऊपर जा सकता है, इसलिए इसके धन के इच्छा को समाप्त करना है और उसको उधर में बढ़ाना है, ऐसा सोच करके उन्होंने एक दिन प्रकट होकर के, अरे तुमको धन की आवश्यकता है ना? तो हाँ देवी जी धन, तो तुमको ऐसा सुंदर धन देंगे जो उसे बढ़कर के और कोई धन नहीं हो सकता। सब धनों में सबसे बड़ा धन क्या है? भक्ति धन भी सबसे बड़ा है। देवी ने विचार करके सदगुरु के पास में कोई ऐसे ही जाए, अबोध बालक भी जाए, अबोध बालिका भी जाए, नहीं समझने पर भी उसको धीरे धीरे वो लोग भगवान के प्रेम तक ले जाए, और अशुद्ध जो गुरु हैं वो क्या करेंगे, कहीं जैसे देवी जी की उपासना करो, गणेश जी की उपासना करो, शंकर जी की करो, चामुंडा जी का, चामुंडा जी बहुत प्रसन्न हो करके ये तुमको दे दें। विंध्याचल वासिनी, विंध्यवासिनी देवी जी की लाखों लोगों की भीड़ होती है वहाँ पर, ऐसे ही ऐसे गुरु के पास में चले जाएंगे, ये त्रिशूल में सिंदूर लगा करके पूजा कराएंगे, ये सब काम कराएंगे, उसको बतला दें। तो ये देवी जी जैसे रहते हैं उनको ऐसे ही करती है। देखा जी ये तो गोवर्धन वासी वृंदावन वासी ये ब्राह्मण है, इसको छल प्रपंच नहीं करना चाहिए, ठगना नहीं चाहिए, इसलिए उसको सरल ब्राह्मण समझ करके और उसको दशाक्षर मंत्र दे दिया है। दशाक्षर मंत्र और अष्टदशाक्षर मंत्र दोनों ही ठीक है, एक ही तात्पर्य पर है, किंतु और रसों में भी अष्टदशाक्षर वाला चल जाएगा, किंतु मधुर रस के लिए वो विशेष रूप से जरूरत है दशाक्षर वाला, और उसके साथ में और आठ शब्द उसमें और जोड़ जाए, वो अष्टादश। इस समय में सनातन गोस्वामी जी और वैष्णव की कृपा से हमारे संप्रदाय में अष्टदशाक्षर मंत्र ही गोपाल मंत्र, पहले महाप्रभु तक हम लोग जहाँ तक देख पाते हैं दशाक्षर का ही प्रयोग होता है, किंतु हम समझते हैं कि वो प्रयोग केवल वैसी लोग के लिए करते थे जिसमें प्राप्तम संस्कार से वो भाव आया हो, उन्हीं लोगों को और किसी को नहीं देते थे, अनाधिकारी जैसे तैसे अब सबको अष्टदशाक्षर देते हैं ना, ऐसे पहले नहीं था, उसी अधिकारी को विशेष रूप से देते थे और किसी को नहीं देते थे, तो वो उनको दे दिया। करने लगा वो बेचारा ब्राह्मण देवी जी के बातों से, देवी जी ने दर्शन देकर के ये मंत्र दिए थे, इसलिए उसमें खूब निष्ठा हो गई। निष्ठा होने पर करते 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 धन की लिप्सा दूर हो गई, और धन बिना लिए हुए ही इस मूल धन को लेकर के चल पड़ा, और वहां से चला गया सागर के मेले में, स्नान किया, देखा विरक्ति हो गई, गया में आया वहां पर विरक्ति हुई, वहां से वाराणसी में आया, मुक्ति की तरफ में कुछ थोड़ा सा लुप्त हुआ, शंकर और पार्वती जी ने दर्शन दिए, अरे खबरदार भागो यहाँ से, यहाँ मत रहो, बस अरे चले जाओ यहाँ से, वो कृपा किया इसीलिए बतलाया, नहीं तो नहीं बतलाते। और लोगों को तो सब मुंडन करते हैं शंकर जी वहाँ पर पार्वती, मुंडन करा करके चोटी भी निकलवा देते हैं, कहो जैसे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये मस्तक मुंडन करा करके और ये उनको मंत्र दिलवाते, किंतु इसके लिए कृपा करके उसके वहां से भगा दिया, जल्दी से भागो, यहाँ मत रहो, नहीं तो मुक्ति तुम्हें निकल जाएगी। मुक्ति व्याघ्री है, व्याघ्री मैंने बाघ की स्त्री, अभी निकल जाएगी, जल्दी भागो यहाँ से, भगा दी। कहीं मत मुड़ना, कहीं नहीं टिकना, एकदम सीधे मथुरा वृंदावन चला जाना, विश्राम घाट में स्नान करके बस वृंदावन जाना। ये चला किंतु प्रयाग में कुछ समय के लिए ठहर गया। देखा जो लाखों लोगों की भीड़, एक एक मन के जटा वाले, जटाजूटधारी, बड़े बड़े त्यागी, भस्म रमाए हुए, अग्नि ताप के हुए और खाली शरीर, बस ऐसे ही वहां पर बैठे हुए यज्ञ कर रहे हैं। इनको देखकर कहा, ये तो बड़ी महात्मा है, यहाँ कुछ ठाकुर देखने ही क्या करते हैं, कहीं देखा जे पाठ हो रहा है, कहीं प्रवचन, जय सियाराम, जय 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 सियाराम इत्यादि सब कीर्तन भी खूब जोरों के साथ में लगा हुआ है, और सब तरह के साधु संत तो वहां पर एक महीने के लिए, माघ महीना भी आया आ रहा है ना, कब से आएगा, चल रहा है, आरंभ हो गया है, हाँ चल रहा है, संक्रांति 15 दिन पहले यहाँ लगता है, पूर्णमासी से अमावस्या से प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है। तो वहां पर स्नान हो रहा था, कैसी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, देख रहे हो, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लोग ठिठूर रहे हैं, और वो सब संत लोग ऐसे ही शरीर, खाली शरीर से, कोई शरीर को गर्म कैसे करें, चिलम में गंजा भर लिया है ना? और ऐसे शरीर को गर्म करते हैं और खाली शरीर रहते हैं, उसमें अच्छे अच्छे भी संत हैं, सबको ऐसा मत समझो नहीं तो अपराध हो जाएगा, अच्छे अच्छे संत लोग हैं वहाँ पर। वो आश्रम है कौन ऋषि का, भरद्वाज का, वहाँ पर वाल्मीकि जी भी कुछ समय तक, रामचंद्र जी वहीं पर पार हुए थे गंगा नदी को, बहुत ही पवित्र स्थान है, वहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी को अपनी शिक्षा दी, वो सब पवित्र स्थान है, वहाँ आए और उनको देख करके सोचा जी हम भी ऐसे ही होते तो बड़ा अच्छा, कितना लोग सब सम्मान दे रहे हैं लोगों को, साधु संतों को। तो वहाँ पर कुछ दिन रहे किंतु फिर मन नहीं लगा, वहाँ पर कौन गोपाल है, बिंदु माधव,
बेणी माधव, बिंदु
माधव, बेणी माधव, बेणी माधव, बेणु माधव, बेणु माधव, वहां पर उनकी पूजा करते देखते थे, दर्शन करते थे और प्रवचन इत्यादि सुनते थे, किंतु अपने स्वभाववश ये वहां पर कुछ कीर्तन करने लगे, तो उन लोगों ने क्या चिल्ला रहे हो ना, यही पूछे उन लोगों से,
क्या चिल्ला
कीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने पूछे क्या चिल्ला रहे हो, और शोर मचा रहे, और कोई जो प्रवचन इत्यादि गई ये क्या बक रहे हैं दिन रात, ऐसे ऐसे रिमार्क किया, तो उन लोगों ने जो अच्छे शिष्ट थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपराध हो जाए, इसको मना किया, और भगवान की कथाओं का महात्म वर्णन किया उनसे। फिर वहां से विरक्ति हुई तो वहां से चले और मथुरा में आए, विश्राम घाट में स्नान किया शंकर जी के कहने से, शंकर जी के कहने से वाराणसी में ही, काशी में ही उनको मंत्र जपते जपते अपने इष्ट देवता का दर्शन हुआ है। मंत्र जो देवता है ना, गोपाल जी के, गोपाल मंत्र के कौन देवता है, गोपाल, कौन गोपाल, जाति रही भावना जैसी हरि मूरत देखा, किसी ने देखा गोचारण करते हुए कृष्ण को, किसी ने जसोदा जी के गोदी के लाल को देखा, और किसी ने कृष्ण गोपाल, किशोर गोपाल का दर्शन किया। तो उन्होंने गोचारण करते हुए, बंसी बजाते हुए, सखाओं के साथ में वृंदावन में जाते हुए कृष्ण को, यदि हम लोग मंत्र जप करते हैं और जब तक वो ध्यान में दर्शन में नहीं आया तो समझे जैसे अभी हमारा बेकार का भी हुआ, कब होगा कब होगा, उत्कंठा रहनी चाहिए, एकदम तन्मय होकर के उस मंत्र को करना चाहिए, और ये समझना चाहिए वो मंत्र साक्षात गोपाल देव है, तब तो ये होगा, अन्य तो जन्म जन्मांतर इसी में लग जाएगा। ऐसा नहीं कि वो बेमन के कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और कभी कभी सो जाते हैं, कभी कभी विक्षेप होता है चित्त में, तब मंत्र का फल नहीं। इसलिए मंत्र का फल तब होगा जो गुरुदेव ने जिस रूप से बताया है उस पद्धति से हम एकांत चित्त से अभिनिविष्ट होकर मन को सब विषयों से हटाकर बड़े आर्द्रता और नम्रता के साथ में आंख में आंसू लिए हुए उसका स्मरण करें। ठीक ये गोपाल देव है, ये सब पद्धति। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में खाने की घंटी बज गई है और उधर में हम मंत्र जपने बैठे हैं तो एक एक बार कर दिया या दो बार कर लिया और जल्दी से उठ करके चले। पति जा रहे हैं बाहर में नौकरी पर, ड्यूटी में जा रहे हैं या हमको ही ड्यूटी में जाना है और हम मंत्र जप करने बैठे हैं। लड़कों ने कहा जी मैया दे दे जल्दी कुछ खा करके स्कूल जाऊँ। पति ने कहा जल्दी से रसोई भी बनाया नहीं तूने, क्या नाक पीप रही है, बस हो गया। ऐसे नहीं, फिर चित्त से अनन्य भाव से मंत्र को स्वयं प्रभु ज्ञान करके गुरु गोष्ठे स्वमंत्रे इस मंत्र में भी ऐसी निष्ठा हो करके तब करना। और हरे कृष्ण कर दिया ऐसे नहीं, हो शांति से प्रेम से निष्ठा के साथ में करता हूं। तो उनको मंत्र देवता का दर्शन, गुरु जी के भी दर्शन, और उन्होंने शिव पार्वती वहीं पर उनको दर्शन देकर जल्दी से भगो यहां से, यहां मत रहो, जाओ वृंदावन। तो ये मथुरा में पहुंचे, विश्राम घाट में स्नान किया, स्नान करके वृंदावन में प्रवेश। वृंदावन में प्रवेश करके जमुना के किनारे पहुंचे, वहां पर कोई बस्ती फस्ती उस समय नहीं थी, वहां पर पहुंचे। एक कुंज से बड़े विलाप करने जैसी आवाज, किंतु मधुर आवाज आई। फिर जरा गौर के साथ में सुना, आकर्षित करने वाली आवाज थी कीर्तन की। नहीं, ये कीर्तन कर रहा है ना रो रहा है, ना रो रही है ना कीर्तन कर रही है, स्त्री है कि पुरुष है ये सब कुछ भी नहीं, किंतु अत्यंत आकर्षण उस स्वर में था। उसी स्वर को पीछा करते हुए जिधर से आवाज आ रही धीरे 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 चले केशी घाट के करीब में एक जमुना के उपवन में एक सघन कुंज के तरफ में वो गए। देखा जी आवाज तो यहीं से आ रही है कहीं से, फिर से किसी कुंज में झांक करके देखा, एक ब्राह्मण देवता है, बड़ा दिव्य चेहरा, बहुत दिव्य चेहरा, आकर्षणकारी रूप और बड़े सुस्वर से कीर्तन कर रहे हैं, और वो शायद यही कीर्तन होगा, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जशोदा तनय श्री बल्लभी जी, हा पर विशेष जोर, हासी जशोदा तनय कीर्तन कर रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे, मुख से लाला निकल रहा है, होश में है कि बेहोश में है ये समझ न सके। देखा जे सचमुच ये कीर्तन करते करते बेहोशी हो गए, गए जमुना से पानी लाए, मुख उनका धो दिया और पत्थों का व्यंजन बनाकर और उनको होश में लाने की प्रक्रिया में लग गए। थोड़े देर के बाद में वो उठे, उठ करके बोले तुम आसाम प्रागज्योतिषपुर से आया हो, कैसे ये जान गए, तुमको देवी ने कोई मंत्र दिया? ये कुछ भी उत्तर नहीं दे, वो दशाक्षर तुमको गोपाल जी का मंत्र दिया, तुम वहां से फिर चला गया गंगा सागर से होकर के गया और गया से प्रयाग आया वाराणसी, शंकर पार्वती ने तुमको ये बातें कही, जितने वो कहते जाते हैं ये आश्चर्यचकित होते चले जा रहे हैं,
श्रद्धा उतना ही बढ़ रहा है
और उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी। ठीक से सुन रहा है, मुख से कपड़ा हटाओ, एकदम ताजा होकर के सुनो सर, पूछेंगे जी क्या हमने कहा, एकदम यह मैं रिपीटेशन दोहरा रहा हूँ। कल से वो अपना आरंभ वक्तव्य वहां से करेंगे जहां से आज मैं संक्षेप में बतला, इसमें भी बहुत सी शिक्षा की बातें हैं। तो उन पर श्रद्धा पड़ी, कैसे जान गए और अवाक हो करके निःशब्द हो करके सुन रहे हैं केवल। तुम वहां से प्रयाग में आया और वहां से अभी आ रहे हो, कहा जी गुरुजी आपने कैसे जान लिया, गुरुजी तो नहीं कहा पहले, कैसे आप जान गए? तो उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। बड़े प्रभावित, गुरु पर श्रद्धा होने के लिए ऐसे ही जरूरत होती है, तब वो श्रद्धा जीवन भर टिकती है, अन्यथा वो टिक नहीं सकती। जिस पर श्रद्धा नहीं है और अरे भाई तुम हरिनाम दीक्षा तो ले लो, कहे अभी कल परसों लूंगा, अरे नहीं नहीं इसके लिए समय की जरूरत नहीं, अभी ले लो फिर मन तुम्हारा बिगड़ जाएगा, अभी ले। देखा जी आदमी धनी है और अच्छे घर का है, कुछ माल मिल सकता है, हो सकता है और इसके द्वारा हमारा काम भी निकल सकता है, कोई राजकीय कर्मचारी है, कोई मामला पमला लगा तो वो ठीक कर सकता है। तो कहेगा जी आज ही आज तुम मत, दीक्षा के लिए कोई नोट की जरूरत नहीं, अभी तुम ले लो। उसके कान से नहीं हुआ तो गले कहा जी भाई एक माला ले आओ, तो वो लेना नहीं चाहता था, तो उसने कहा जी अच्छा भाई तो ठीक है तुम ये खाने पीने की कोई बात नहीं, जो इच्छा सो खाना पीना, और किसका मंत्र चाहिए किसका मंत्र, गणेश जी का, किसको तुमको चाहिए, जो वो कहेगा जी अच्छा अच्छा ठीक है ये। आज जो शुद्ध गुरु होगा कहा जी मैं मंत्र फंत्र नहीं देता, देखेगा उसको देखने से समझ जाएगा जिसकी भावना कैसी है, यदि कृष्ण भक्ति की इच्छा हो तो उसका मंत्र देगा, और नहीं तो वो टाल बहाना करके उसे हटाएगा। आज यदि थोड़ा सा मध्यम अधिकारी जरा कम कमजोर हो तो उसको कुछ दिन संग में रख करके तब उनकी भावनाओं का पता लगा करके तब फिर उसको देगा, यदि वो ठीक ठीक गुरु होगा तो। मध्यम अधिकारी ही गुरु होते हैं, उत्तम अधिकारी नहीं। यदि उत्तम अधिकारी भी यदि होगा कोई गुरु तो वो मध्यम अधिकार में वहां पर थोड़ा सा आ करके तब वो देता है, नहीं तो ये उत्तम अधिकारी के लिए वो गड़बड़, वो नहीं रह सकता। नारद जी कभी कभी करते हैं तो ऐसा हम लोगों जैसा दीक्षा का अनुष्ठान पूर्ण करके नहीं, वो तो हृदय में स्फूर्ति कर दिया और बस दो चार उपदेश दे दिए बस हो गया। कभी नाम का एक व्यक्ति थे सुना ना, तो वो एक रामानंद आचार्य थे, रामानुजी वैष्णव, उनसे हरिनाम लेना चाहते किंतु उनको ये दे नहीं गए थे, जब ही आते भगा देते, किसी तरह से नहीं देखते थे ये पक्का मायावादी है, निर्विशेषवादी, नहीं देना चाहते। तो वो सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे प्रयाग, तो कुछ एक दिन अंधकार था कुछ अधिक और ये रास्ते पर लेट गया और उधर से रामानंद जी आ रहे, तो उन्होंने अंधकार में देखा नहीं, उनके शरीर से उनका पैर लग गया, तो उन्होंने कहा राम कहो राम कहो राम कहो, बस एक उठ करके खड़ा हो गया और उनके चरण पकड़ लिए, बोले मेरी दीक्षा हो गई गुरु जी आप मेरे गुरु हैं, राम 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 करने लगे, हो गई दीक्षा। ऐसे भी होता है, चलाकी चतुराई से ले लेते हैं, तब उसकी निष्ठा थी, किंतु वही उनकी दशा हुई निर्विशेषवादी, भक्ति जो राय उनसे लेना था तुलसीदास जी जैसे उनसे लिया, वो जैसे हुए वो नहीं हो सके, निराकारवादी हो गया। तो कहाँ कह रहा था, हाँ वो गुरु जी से कुंज में भेंट होने पर गुरु जी ने ऐसी बातें कही जिस उसकी पूर्ण रूप से श्रद्धा इन पर हो गई। तो इन्होंने प्रश्न किया जी मैं बहुत दूर से आ रहा, और मेरे हृदय में एक लालसा लगी, भाई साध्य साधन क्या है? ये उनका प्रश्न, साध्य और साधन क्या, साध्य हमारा क्या है और उसके लिए साधन क्या? यह प्रश्न यदि किसी शिष्य के अंदर में नहीं हुई, साधक के अंदर में नहीं हुई, तो वो अपने गंतव्य स्थान पर कभी भी नहीं जा सकता। वो देखते हैं कि महाप्रभु दक्षिण गए थे पूर्व बंगाल में, उत्तर बंग, वहां पर भी तपन मिश्र ने पूछा हमारा साध्य और साधन क्या है, तो यही इसने प्रश्न किया। बड़े प्रसन्न भय गुरु, वाह ये तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया, हम अभी तक मैं निर्णय नहीं कर सका हूं कि हमारा साध्य क्या है, माने किसकी उपासना करनी चाहिए और कैसे उपासना करनी चाहिए, उससे क्या हमको जरूरत है, ये न रहेगी तो शिष्य किस लिए किसके पास जाएगा, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों को पहले ही साधन अवस्था में ही हमारा साध्य और साधन दोनों को निर्णय, हम किस रास्ता से चलेंगे और इस रास्ते से जाने से हमको क्या मिलेगा, ये सब संप्रदाय में ये चीज है और किसी भी संप्रदाय में ये चीज नहीं है। तो उन्होंने कहा जी भाई समय कम है और तुमको मैं इसके संबंध में कुछ आप बीती बातें बताता हूं, तुमको तो वो मंत्र मिल ही चुका है और तुमको दर्शन भी हो चुका है, किंतु फिर भी तुमको साध्य और साधन का पता नहीं। किसी किसी स्थिति में ऐसा हो सकता है मंत्र के द्वारा ऐसा हो जाए, किंतु जब तक वैष्णव संग न हो उपयुक्त,